نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح جمع ہونے کا موقع دیا اور ہم اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک مسلمان کی زندگی میں کیا مقام ہے. سننا چاہتے ہیں؟ یہ اتنا پیارا موضوع ہے کہ جس پہ بات کرنے سے پہلے ہی دل جو ہے وہ دھک دھک کرنے لگتا ہے, کیونکہ اللہ کا نبی وہ نبی جس نے اپنی زندگی اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے میں صرف کی. تھوڑا سا آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. بڑی محبت سے اپنے دل میں اس چیز کو, میرے حال ہم سبھی کے لیے یہ کلام ہے, میں آپ سب سے بہت ہی مودبانہ قسم کی ریکویسٹ کروں گی کہ کسی کا سیل فون ہے تو اس کو بند کر دیں. میرا خیال ہے کہ میرے پاس بھی اگر ہے تو فرحانہ آپ لے لیجئے, اس لیے کہ جب تک ہم فوکس نہیں ہوتے اس وقت تک, اور چھوٹی سی انٹرپشن جو ہوتی ہے بعض دفعہ وہ ہماری بات جو ہے اس کو سنانے میں مشکل کر دیتی ہے. تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی جو تعلق اور اس کے محبت کی بات کریں گے, یہ بات کرنی کوئی نئی نہیں. اس سے پہلے بھی بہت دفعہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت آپ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہوں گے. ابھی بھی وہ ماحول نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات کر سکیں, یقین کریں. جی آواز مجھے بھی تھوڑی گڑبڑاہٹ تھی تو اس لیے کہ پیچھے سے اونچی ہوگی اب آواز, میں تو بہت قریب کر کے اس کو بول رہی ہوں. بس پن ڈراپ سائلنٹ ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں. ہم جب اللہ کا کلام لے کے اور اللہ کے نبی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمارا دل ہر چیز سے خالی ہونا چاہیے. سچی اور پکی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مقام کو ہم اپنے سامنے رکھیں, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے, جس گھر میں وہ پیدا ہوئے وہاں اسلام کا نام نہیں تھا بھی. اللہ تعالیٰ نے باپ کو دنیا سے پہلے ہی اٹھا لیا آپ کی ولادت سے پہلے, اور آپ کو آپ کے دادا نے اور آپ کے چچا نے پالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کی خبر ملی تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا, اور چچا اور بھتیجے کی محبت عرب کلچر میں بھی بے مثال ہے. جیسے آج ہمارے ہاں بھی چچا بھتیجے کا تعلق بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اتنا خوش ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کے کہ سویبہ نام کی ایک لونڈی تھی, اس نے آ کے خبر دی کہ آپ کے مردہ یعنی بھائی فوت ہو چکے تھے, عبداللہ ان کا نام تھا, آپ کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. کہنے لگا تم اتنی اچھی خبر لے کے آئی ہو کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اتنی خوشی تھی اس کو. پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں پلتے رہے. شروع سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعلیٰ اخلاق دیا تھا, اور جن لوگوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں ان کے کردار کے اندر واقعی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ شروع سے ہی لوگ ان کی خوبیوں کے معترف ہوتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو آپ کو سچے خواب آنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز خواب میں رات کو دیکھتے وہ صبح اس طرح ہو جاتی جیسے کہ حقیقت کی خبر ہوتی ہے. یہ ایک علامت تھی اس بات کی کہ یہ زبان جب اللہ کے کلام کے لیے کھلنے والی ہے, इसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से कुछ ऐसी निशानियां दिखाना चाहता है कि जिसकी वजह से लोग मान जाएंगे कि ये अल्लाह का रसूल है। आप गारे हिरा में जाके इबादत करने लगे। हर वो दिल जो अल्लाह के कलाम को जज्ब करना चाहता है ना, उसको थोड़ी सी तन्हाई चाहिए होती है। जैसे कि आज के दौर में भी हम देखते हैं कि शैतान ने हमारी जिंदगी में इतनी खलल अंदाजी की, इतनी इंटरप्शन कर दी कि बाज दफा बाथरूम में भी इंसान जो जाने के बाद अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता। और तो और खाना कबा में भी जब इंसान तवाफ कर रहे होते हैं तो वहां सेलफोन्स की घंटियां और वहां एक दूसरे से बातें करना क्या बताता है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं जुड़ा। अल्लाह के नबी सल्लम को वो कलाम मक्का की गलियों में नहीं मिला, जहाँ चारों तरफ बुत थे, जहाँ लोग महफिलें सजा के बैठा करते थे, जहाँ खाने पीने की बातें हुआ करती थी, जहाँ बैठकें होती थीं और लोग अपने बाप दादा की बड़ाइयाँ बयान करते थे। ऐसी जगहों पे अल्लाह का कलाम नहीं आता। तन्हाई पसंद हुए, जौ ले जाते, पानी ले जाते और गारे हिरा में जाके इबादत करते। आज भी अल्लाह ताला आपको मौका दे खाना काबा को देखने का, हज की या उम्रे की नीयत से अगर आप जाएं तो मौका मिले तो जाके गारे हिरा को देखिए। दूर से देख लें वो पहाड़ इतना ऊंचा है, बड़े अज़्म और इरादे वाले ही वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन आप वहाँ रहते थे तन्हाई में, क्योंकि अल्लाह के कलाम को जज्ब करने के लिए खामोशी बहुत ज़रूरी होती है। अल्लाह ताला जैसे अपनी ज़ात में शिर्क पसंद नहीं करता ना, इस तरह अपनी बात के अंदर भी शिर्क पसंद नहीं करता। जब तक हमारे दिल और हमारे दिमाग अल्लाह की मोहब्बत में खालिस नहीं हो जाते ना, बिल्कुल खाली करके हम बैठते हैं, फिर अल्लाह की बात समझ आती है। जैसे ये ग्लास है, इसमें पहले से कुछ अगर है, अब इसमें अगर मैं जमजम डालूँ, मैं इसमें दूध डालूँ, फ़ायदा नहीं होगा, पहले इसको खाली करना पड़ेगा। अगर इस ग्लास में गंदा पानी होगा तो वो जमजम का असर भी ख़त्म होगा। इसी तरह जब हमारे दिलों के अंदर कुछ ऐसे ख्यालात आ रहे होते हैं, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारा जहन कहीं और भटक रहा होता है, तो हम अल्लाह की बात सुने भी तो हमें समझ नहीं आती। इसके लिए तन्हाई ज़रूरी है। पहली बात जो आज की इस महफिल से हम अपने अमल के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ले सकते हैं, और वो क्या है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ घड़ियाँ ऐसी ज़रूर हों कि हम बिल्कुल तन्हा होके बैठें। रमज़ान आता है, आखिरी अशरा आता है, तो कुछ लोग मोहब्बत में एतिकाफ़ करना चाहते हैं और वो 10 दिन के अल्लाह दुनिया से अपने आप को काटने का जो सफ़र होता है वो क्या बताता है कि क्या सिर्फ एतिकाफ़ रमज़ान के आखिरी 10 दिन में होगा? हरगिज़ नहीं। एक ईमान वाला जिसको रमज़ान का महीना नसीब ही ना हो, उससे पहले ही दुनिया से चला जाए या उससे बाद उसको मौका ना मिले, ये असल में एक इस्तियारा है, एक इशारा होता है कि ईमान वाले की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वक्त तन्हाई के लिए, गौर व फिक्र के लिए और तदब्बुर के लिए होना चाहिए। दिन में जो 5 वक्त की नमाज हमें सिखाई गई वो भी यही सिखाती है। 15 मिनट वजू के लिए छोड़ दिए, अजान के बाद 15 मिनट छोड़े, अब जाओ दुनिया के कामों को छोड़ो। ये नहीं कि खाना पका रहे हैं और जाते जाते फौरन मुसल्ले पे खड़े हो जाएं। खाने में नमाज में भी ख्याल आता रहेगा, चावल उबलने वाले हैं, अभी दाल गल ना जाए, अभी गोश्त जल ना जाए। नहीं, 10-15 मिनट पहले खाली कर दो। हज के लिए क्यों बीवी बच्चे घर सबको छुड़वा के इतनी दूर ले जाया जाता है 2-4 जोड़ों में? मर्दों को सफ़ेद कपड़े का यानी एक जैसे अहराम पहना दिया जाता है ताकि तुम्हें पता तो चले कि अल्लाह के लिए दूसरी चीज़ों को छोड़ने में मज़ा क्या है। तो लिहाजा पहली चीज़ हमने अभी सीखी कि जब कभी हम इस बात का दावा करना चाहें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक़ जुड़े तो वो कैसा होगा? अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। और अगर हम में से कोई ये चाहता है ना कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, तो उसका भी नुस्खा अल्लाह के नबी सल्लम के थ्रू जाता है, फत्तबेउनी युहबिबकुमुल्लाह। अल्लाह के नबी के ज़रिए से कुरान पाक में कहलाया गया, तुम मेरी पैरवी करो, तुम मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आज हम में से सुनने वाली हर बहन अल्लाह के नबी की मोहब्बत में चूर चूर होगी, होना चाहिए, हमारे ईमान का हिस्सा है। जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे दिल में मोहब्बत नहीं आती, हमारा ईमान पूरा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहें, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे ईमान पूरा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह तो अपने दौर में यहूद का भी कलमा था, नसारा का भी यही कलमा था, फ़र्क किस में है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। असल बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोल मॉडल बना के भेजा गया। आप उसी गारे हिरा में एक दिन मसरूफ इबादत थे कि आपके पास जिब्राइल अमीन आते हैं, फरिश्तों के सरदार, जिनको अल्लाह ताला ने अपने पैगाम के लिए चुना, और उन्होंने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का कलाम नाजिल किया। पहली वही जो उतरी, आप में से बहुत सारी बहनें जानती होंगी, सूरत अलक की पहली 5 आयतें, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। पहला लफ्ज़ शरीयत को क्या मिला? गौर करने की बात है। आज हम जब कुरान पाक को साथ लेके चलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दीन इस्लाम में किस चीज़ की क्या जगह है। इकरा पढ़ो, पढ़ना लिखना, कौन सा पढ़ना? बिस्मि रब्बी का, वो पढ़ना जिसमें अल्लाह का नाम हो। 2 दफ़ा बात आती है, इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी खलक, उस रब के नाम के साथ पढ़ो जिसने पैदा किया। अल्लज़ी खलक अल इंसान मिन अलक, गोश्त के एक जमे हुए लोथड़े से पैदा किया। इकरा व रब्बुकल अकरम, दोबारा कहा इकरा, फिर पढ़ो, यानी पहली वही में 2 दफ़ा कहा पढ़ो। इससे क्या पता चला कि दीन इस्लाम की बुनियाद पढ़ना है, लिखना, इल्म। अमल कब होता है? जब इल्म होता है। दुनिया के किसी काम को करने से पहले हम उसको सीखते हैं। गाड़ी चला सकते हैं जब तक गाड़ी चलाना ना सीखे? सीखते हैं ना, खाना पकाने से पहले सीखते हैं। इसी तरह दीन इस्लाम का पहला हुक्म क्या था कि इल्म हासिल करो। अल्लाह के नबी सल्लम ने पढ़ना चाहा, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी थे। अल्लाह ताला ने एक एजाज दिया कि वो शख्स जो कभी किसी मदरसे में नहीं गया, किसी स्कूल में नहीं गया, जिब्राइल आके उनको कह रहे हैं पढ़ो, आप बार बार कह रहे हैं माना भी कारी, माना भी कारी, मैं कारी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा अल्लाह के नबी आप कोशिश तो करें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाया, जैसे भींचा, और उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान को खोल दिया और आपकी ज़ुबान पे आयत आ गई कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लम अल इंसान मा लम यालम। अल्लाह ताला कहते हैं पढ़ो, अल्लाह ने तुम्हें वो सिखाना है अब जो तुम पहले नहीं जानते थे। फरिश्ता तो ये काम होने के बाद चला गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम कांप रहे थे। पहली दफ़ा फरिश्ते को देखना एक अनयूजुअल कैफियत, कुछ पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। घर जाते हैं और प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहते हैं ज़म्मेलूनी ज़म्मेलूनी, ए खदीजा मुझे चादर उड़ा दो। इतनी शिद्दत थी कि सर्दी लग रही थी कि जैसे इंसान को बुखार होती है, बुखार होता है, आपको महसूस हुआ। कहा खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है, आज मेरे साथ एक अनयूजुअल वाक्या हुआ। आपकी प्यारी बीवी हतीजा, आपकी ढारस देने वाली, आपको लेके वरका बिन नौफल के पास चली गई। वो उनके कजन थे, रिश्तेदार थे, और ईसाई मजहब कबूल कर चुके थे। इस्लाम से पहले का वैलिड मजहब जो एक यानी लागू मजहब था वो क्रिश्चियनिटी थी। जब वरका बिन नौफल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत देखी और आपसे वही के आने की कैफियत मालूम की, तो साथ ही कहा कि ऐसा ही तो हर नबी के साथ होता है। फिर उन्होंने खुशखबरी दी कि खतीजा मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे शौहर को नबूवत के लिए चुन लिया। आप ज़रा सोचिए, खतीजा के लिए ये कितनी बड़ी खूबी थी, कितनी खुशी की बात थी। थोड़ी सी तसल्ली हुई, और उस वक्त वरका बिन नौफल ने कहा कि भतीजे, काश मुझे अल्लाह इतनी उम्र दे कि मैं वो वक्त देखूं कि जब तेरी कौम तुझे छुटला देगी। कल मेरी कौम मुझे छुटलाएगी? वो तो मेरे से इतना प्यार करते हैं, वो तो मुझे सादिक और अमीन कहते हैं। कहा हाँ, लेकिन जिसने भी हक की बात की उसकी कौम ने उसको झुठलाया। अल्लाह के नबी को उस वक्त यकीन नहीं आया ये कह क्या रहे हैं, और बात वही हुई। फिर अल्लाह के नबी सल्लम उस वही की लज्जत को महसूस करने लगे। काफ़ी दिन तक वही ना आई, खामोशी रही। कहते हैं कि मेरा दिल मचलता, जैसे हमें कोई थोड़ी सी अच्छी सी चीज़ चखा के फिर उससे महरूम कर दिया जाए, तो एक तलब होती है ना, एक तड़प होती है, वही थी आपकी। कहते हैं कि आप सीरत की किताबों में पढ़ें, अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे लगता था मैं किसी पहाड़ पे जाके अपने आप को लुढ़का दूं, इतना मुझे, मैं मिस करता था उस वही की कैफियत को, कि एक दिन मैं मक्का की गलियों में जा रहा था कि मुझे ऊपर से आवाज़ आई, और जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा। सिर्फ 2 पैर खुले हुए थे उनके, लेकिन इतने बड़े थे वो, कैसे लगता था पूरे आसमान पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। ये पहला मौका था जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुली आंखों से असली शक्ल में देखा। आपकी पूरी नबवी जिंदगी में इस जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो इंसानी शक्ल में आते थे, सबसे ज्यादा जिस सहाबी की शक्ल में आते थे उनका नाम था दाहिया कल्बी, बड़े खूबसूरत सहाबी थे तो उनकी शक्ल में आते थे ताकि दूसरे लोग घबरा ना जाए। लेकिन दो दफ़ा, एक ये मौका और एक मेराज का मौका, जब तकरीबन 10-12 साल और गुजरने के बाद होगा, तो उस वक़्त दिखे। कहते हैं उन्होंने मुझे देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो वही आवाज़ है जो मैंने पहले सुनी थी। और उसके बाद जो दूसरी वही अल्लाह के नबी पे उतरी वो क्या थी, वानज़िर आशीरतक अलअक़रबीन, सूरह शुरा की आयत है, और अपने करीब के रिश्तेदारों को आगाह कीजिए। हुक्म मिल गया, गौर कीजिएगा दीन की तरतीब। पहला हुक्म क्या था, इक़रा, कौन सा पढ़ना, बिस्मि रब्बी का, यानी दुनिया की कोई तालीम पढ़ो, साइंस पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, लेकिन उसका एंड क्या हो कि तुम्हें अल्लाह से जोड़ दे। खुदा फरमोशी वाला इल्म नहीं कि जितना पढ़ते जाओ उतने तकब्बुर में आ जाओ और तुम्हारा सर ही उठता जाए और तुम नमाजें भी छोड़ दो, अल्लाह को भी छोड़ो। नहीं, इस्लाम किसी तालीम से नहीं रोकता। आप दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें, आप साइंस पढ़ें, आप डॉक्टर बने, आप मेडिकल सीखें, सब करें, लेकिन उसका लास्ट एंड खुलासा क्या हो कि आप अल्लाह से जुड़ जाएं। और ख़ास तौर पे इसमें वो इल्म आता है जो इंसान के लिए इल्म वही, कुरान का सीखना, नबी सल्लम की हदीस का सीखना। जब ये हुक्म आ गया ना, दूसरा हुक्म अब आप देखिएगा, रिश्तेदारों को डराओ। अल्लाह के नबी सल्लम अल्लाह के हुक्मों को सुन के ऐसे ही नहीं बैठ जाते थे, आपने इसके बाद क्या किया, एक दावत का एहतमाम किया, अपने पूरे खानदान, कबीले जो करीब के लोग थे उनको अपने घर खाने में बुलाया, इनवाइट किया, सब आए। मक्का वाले जो थे वो बहुत मेहमान नवाज थे और उनकी रिवायात बड़ी अच्छी थी, यानी किसी को दावत दी जाए तो उसको कबूल करना होता था, कोई आ जाए तो उसके लिए इतने इहतमाम करते थे कि बाज़ दफ़ा अपने कोई एक ही ऊँट होता था उसको भी ज़िबा कर देते थे ताकि मेहमान भूखा ना जाए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी दावत रखी। इससे भी हमारे लिए कमल की बात पता चलती है दूसरी, कि जब हमें खुद कोई बात अच्छी समझ आ जाए तो दूसरा काम क्या है कि हम दूसरों को भी उसकी दावत दें। और सबसे पहले अपने रिश्तेदार, करीब के लोग, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके शौहर, आपके अपने माँ बाप, भाई बहन। फिर दूसरी बात यह कि अगर उसमें मैं थोड़ा बहुत खाने पीने का एहतमाम करना पड़े तो इसको नेकी समझ के करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि उसकी वजह से आपके, नहीं मैं इतना एहतमाम नहीं कर सकती, मैं थोड़े ही लोगों को बुलाऊंगी। नहीं, जो हैसियत है बुला लें, क्योंकि आप देखिए कि जब हम दुनिया के लिए खाने पकाते हैं, दावतें करते हैं, तो जब अल्लाह के नाम पे कोई किसी के लिए पकाता है तो उसके लिए उसको अजर मिलता है। अब जब सब खिला लिया, पिला लिया, ये नहीं कि आते ही कहा कि मेरा एक मकसद है, नहीं, सब खा चुके, जब सब खामो खाए फिर अल्लाह के नबी सल्लम खड़े हुए, फिर आपने उससे खुलासा है बातों का, ये तो बहुत तफीली रिवायात हैं जो मैं सिर्फ एक अपने अमल के लिए मुख्तसर सी चीज़ें आपके सामने रख रही हूँ। दुआ करें कि ऐसा मौका हमारी ज़िंदगी में आए कि हम पूरी सीरत को पढ़ें, एक एक लम्हा पढ़ें अपने नबी की प्यारी ज़िंदगी का। अभी रमज़ान से पहले हमने यहीं आपके इस शहर में एक सिरात मुस्तकीम नाम से कोर्स किया था स्टोवनर की मस्जिद में, तो उसमें हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मक्की दौर पढ़ा था। और अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी ने अगर वफा की, तो अब आपको मदनी हिस्सा भी पढ़ाना है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ से आई। जब तक अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के मरहले नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक मोहब्बत नहीं आएगी। और मैंने आज बात शुरू से इसलिए की, जहाँ तक आज रुकी रोक लेंगे, ज़िंदगी में फिर मौका मिला फिर अगली बात सुनाएंगे, ताकि देखे तो सही कि ये दीन आया कहाँ से। आज हम जब तक बेसिक चीज़ को नहीं देखते हमें दीन समझ नहीं आता। आज एक उलझन का शिकार है, हम करें क्या। कोई कहता है बस नमाजें पढ़ते जो यही दीन है, कोई कहता है सिर्फ तुम जिहाद करो यही दीन है, कोई कहता नहीं लोगों के हकूक पूरे करते जाओ। नहीं, अल्लाह के नबी ने किस तरह से दीन पहुंचाया कि रिश्तेदारों को बुलाया और आपने फिर पूछा कि लोगों मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो। आप बिल्कुल तवज्जो ना दें, कोई आवाज़ आ रही है आपके कान और आपका दिल दिमाग इधर होना चाहिए। ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत का तकाजा है, ताकि हमारे दिल अल्लाह के नबी की मोहब्बत से सरशार हो सकें। अब क्या हुआ, आपने अपने लोगों से पूछा ये बताओ कि हम मेरे बारे में तुम क्या कहते हो। होते ना, हर एक पूछता है, आप अपने घर वालों से कभी पूछते होंगे, अच्छा बताओ मैं कैसी हूँ, मैं कैसी भांजी हूँ, मैं कैसी भतीजी हूँ, मैं कैसी बेटी हूँ। सब ने कहा आप तो सादिक और अमीन है, आप सच्चे, आपने कभी झूठ नहीं बोला। कहा अच्छा मैं सच बोलता हूँ। कहा अच्छा, कहा अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फौज आ रही है तो मानोगे। कहा बिल्कुल मान जाएंगे, इसलिए कि आपने कभी झूठ ही नहीं बोला। यानी हम आपसे झूठ का तसव्वुर नहीं कर सकते, इतनी मोहब्बत करते थे आपके रिश्तेदार आपसे। और वाकई सच है, क्योंकि आपका किरदार ऐसा था और आपने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। कहा अच्छा, अगर तुम्हें मेरे पर इतना यकीन है कि मैं एक नामुमकिन बात कह दूं और तुम उसको मानो, तो आओ फिर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। और वो बात कान खोल के सुनने की, और वो क्या कि कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अल्लाह को एक मानो तुम फला पा जाओगे। ये जो दुनिया के बुत हैं, लात मनात उज्जा यऊग यगूस, ये उनके बुत थे। जैसे आज लोग बुजुर्गों को मानते हैं ना बाज दफा के फलां पंचतन पाक हैं, मक्का वालों के भी कुछ इस तरह के बुत थे, अपने दौर के नेक लोग थे। जब वक्त के साथ उनको मौत आती गई तो शैतान ने ऐसा ख्याल डाल दिया कि इनकी मूर्तियां बना के रख लो ताकि इसकी वजह से तुम्हारे घरों में बरकत रहेगी। ऐसा ऐसा कहा अच्छा जहां नमाज पढ़ते हो उस कमरे में रख लो, फिर ऐसा ऐसा कहा अच्छा जहां इबादत करते हो अपने सामने रख लिया करो, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ी इंसानियत तो कहा बस जब अल्लाह से मांगो तो इनके वास्ते से मांगो कि अल्लाह लात के वास्ते दे दे, मनात के वास्ते दे दे, और ऐसा ऐसा वो बुत परस्ती शुरू हो गई। आज जब हिंदू मजहब में देखते हैं कि जब लोग एक मट्टी के बुत के आगे बैठते हैं तो हम सोचते हैं इनको अकल नहीं, उससे अच्छा तो वो इंसान खुद है जो उसके आगे बैठा उसको पूज रहा है, लकड़ी का बुत तो कुछ करता ही नहीं। लेकिन उस दौर में 313 बुत बन चुके थे, और मक्का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पे बनाया था, वहां 360 बुत आ चुके थे। हर कबीले का एक बुत था और हर कबीला अपना अपना बुत वहां रखता, और आते जब हज करते थे वहां, लेकिन जाके वहां बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह के नबी ने जूं ही ये बात कही कि देखो ये कुछ नहीं कर सकते, ये बुत हैं, ये लकड़ी के हैं, ये मट्टी के हैं, ये तुम्हारा क्या देंगे, इससे तो बेहतर है कि वो किसान जिसने दरख्त लगाया बीज डाला वो कुछ कर सकता है, ये लकड़ी का एक तराशा हुआ बुत क्या करेगा। बस ये बात सुनने की देर थी कि वो गुस्से में आ गए, अपनी जगह से उठे। सूरह स्वाद की पहली आयतें आप जाके पढ़ें कुरान पाक में, उनके चचो कहेंगे इस बात के लिए मैं बुलाया था, नौजुबिल्ला। और ये था वो मौका, बड़े तवज्जो से सुनने वाली बात है, ये था वो मौका जिस वक्त अबू लहब जो आपका चचा था कहने लगा नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हाथ टूट जाए। गाली दी, तब्बा तब्बा कहते हैं हाथ टूट जाए तेरे, जैसे हमारी जुबान में ये बात कहते हैं, इसी तरह की बात की गई। अल्लाह के नबी सल्लम ने तो उस वक्त उनको कुछ नहीं कहा था, ये नहीं कहा था कि किस यानी कि ये तुम लोगों ने क्या कहा, अल्लाह ताला ने सूरत तब्बत उतार दी। अबू लहब वो एक शख्स है, आप ये बातें लिखें ताकि बाद में आप अपने बच्चों के साथ क्विज के तौर पे कर सकें कि देखिए वाहिद एक शख्स है पूरे कुरान में जिसका नाम लेकर अल्लाह ताला ने उसको रुसवा किया है, और वह अबू लहब है। पूरे कुरान में आपको अबू जहल का नाम नहीं मिलेगा, उतबा का नाम नहीं मिलेगा, शैबा का नाम नहीं मिलेगा, रबिया का नाम नहीं मिलेगा, वलीद का नाम नहीं मिलेगा, ये बड़े बड़े सरदार थे, किसी का नाम नहीं लिया। इवन अबू जहल का तस्कर है लेकिन अल्लाजी का नाम नहीं दिया, लेकिन अबू लहब ये वो शख्स था। जरा गौर कीजिए, कल 40 साल पहले जब इसी भतीजे की पैदाइश की खबर मिली तो कहने लगा सुबा तू आजाद है, इतना खुश हुआ। क्यों? क्योंकि अगर 12 रबीउल अव्वल था वो दिन या 9 रबीउल अव्वल था, कोई भी दिन था, उसको उससे कोई बहस नहीं। उस दिन कौन पैदा हुआ था? उस दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पैदा हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उसके भाई अब्दुल्ला का बेटा था। लेकिन आज जिस वक्त अल्लाह के नबी ने कहा कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, लोगो अल्लाह को एक मानो, कोई जिंदा कोई मुर्दा तुम्हारे काम नहीं आ सकता, अल्लाह ही की जात है जिसकी इबादत करो और तुम फिर फला पाओगे, तो कहने लगा कि नऊज़ुबिल्लाह तेरे हाथ टूट जाए तो हमारे बुतों की तौहीन करता है, तुम्हारे बुजुर्गों की तौहीन करता है। और ऐसे अल्लाह ने जवाब में सूरह तब्बत जदा उतार दी, माग़नानहु मालहु मा कसब, इस अबू लहब के तो माल काम ही नहीं आएगा जो उसने सारी जिंदगी कमाया था, इसके बेटे इसके काम नहीं आएंगे। और आपको पता है कि अबू लहब का क्या अंजाम हुआ? अल्लाह जिसको रुस्वा कर दे उसका अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? ये वो शख्स है कि जो अल्लाह के नबी का सगा चचा भी था, नबूवत से पहले आपसे मोहब्बत भी करता था, आपका हमसाया भी था, इसका और नबी सल्लम का घर ऐसे था। और जब ये पैगाम आ गया दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, आपके घर के ऊपर से कूड़ा फेंका करता था, जहां अल्लाह के नबी सल्लम की हंडिया पकती थी ऊपर से अपने घर से कोई ऐसी चीज फेंकता कि पकती पकती आपकी हंडिया जो थी वो लुढ़क के गिर जाती। सुबह के वक्त उसको पता था अल्लाह के नबी सल्लम इबादत की गरज से मखारम में जाना चाहते हैं तो आपके रास्ते में कांटे बिछा दिया करता था, कभी घड़े खोद दिया करता था। जरा सोचिए साथियों, क्यों? क्या अल्लाह के नबी फर्क हो गए, बदल गए? नहीं, फर्क ये हुआ कि जब जिसने तौहीद की बात की लोग उसके दुश्मन हुए। खानदान, बिरादरी, बाप दादा की मोहब्बतें, वो तरीके जो जिंदगी में इंसान के राइज होते हैं, जब उस पर चोट पड़ती है ना तो दोस्तियां दुश्मनियों में बदल जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के निकाह अबू ये अबू लहब के बेटों से हुए थे, एक का नाम उतबा था एक का उतैबा था, दामाद थे। जब देखा अल्लाह के नबी दीन पे आ गए, इस्लाम पे आ गए, बेटों को मजबूर किया, कहा इनकी बेटियों को तलाक दो। पढ़िए तारीख के वाक्यात है। अल्लाह के नबी को चोट पड़ी, आपकी एक बेटी नहीं दूसरी बेटी भी घर में आ गई दीन के लिए। आज भी जब आप दीन पे आते हैं तो आपको लगता है आपके रिश्तेदार नाराज हो गए, वो आपको ताने देने लगते हैं, अब इनकी बच्चियों के रिश्ते कहाँ होंगे, अब क्या होगा। अल्लाह के नबी ने गम नहीं किया, अल्लाह के फैसले पे राजी हुए। क्या हुआ पता है आपको? ये वही दो बेटियां बाद में किसकी बीवियां बनी? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की ज़ुन्नौरैन कहलाए, क्योंकि अल्लाह के नबी की एक बेटी उनके निकाह में गई। फिर जब उनका इंतकाल हुआ गज़वे बदर के बाद, जब अल्लाह के नबी आ रहे थे तो पहली बेटी का इंतकाल की खबर मिली, और जब दूसरी बेटी गज़वे तबूक से वापस आए तो उसके इंतकाल की खबर हुई। और आपने कहा कि उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो एक के बाद एक तेरे निकाह में देता रहता। अल्लाह ने कुछ रखा? अगर अबू लहब ने उनको तलाक दिलवाई तो अल्लाह ने अपने नबी को कितना प्यारा दामाद